नमस्कार भारत, 21 नवंबर बुधवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। 1984 के सिख विरोधी दंगों में पहली बार किसी को सुनाई गई मौत की सजा।
बिग विक्ट्री, बहुत बड़ी जीत है ये, मगर ये बिगनिंग है क्योंकि अभी और भी बहुत से केस पेंडिंग पड़े हैं।
मध्य प्रदेश में भाजपा को क्यों मिलते हैं आदिवासियों के बंपर वोट।
वनवासी कल्याण परिषद को फंडिंग किया है, उससे उन लोगों ने एक लोगों को, कार्यकर्ताओं को तैयार किया है।
और उस महिला की कहानी जो उस पार के कश्मीर से आकर इस पार चुनाव जीत गई।
जी सर, मैं इन अपने बहन भाइयों की खिदमत के लिए ये फार्म भरा है और इनकी खिदमत भी करूंगी और अपनी पहचान भी लेना चाहती हूँ सर।
सुनेंगे विशेष रिपोर्ट, अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सर्वप्रिय सांगवान से। 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया था, जिसमें से यशपाल सिंह को फांसी और नरेश शेरावत को उम्र कैद की सजा सुनाई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धार्मिक नेताओं की एक बैठक पर हुए आत्मघाती बम हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की उपलक्ष्य में मौलवियों की सभा में विस्फोट से दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के शिकार लोगों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। हाल के हफ्तों में अफगानिस्तान में कई हिंसक हमले हुए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। किसी भी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आईएस और तालिबान ने अतीत में इसी तरह के हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुताबिक सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के बारे में किंग सलमान को सब कुछ पता था। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि शायद उन्हें यह पता था और हो सकता है कि ना भी पता हो। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका सऊदी को अपना सहयोगी बनाए रखना चाहता है क्योंकि ये मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिका के लिए हितकर है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी ट्रंप के बयान का समर्थन किया।
It's a mean, nasty world out there. The Middle East in particular, there are important American interests. It is the president's
दुनिया बेहद खराब है, खासकर मध्य पूर्व क्षेत्र, अमेरिका का हित है वहाँ। ये राष्ट्रपति के साथ साथ विदेश मंत्रालय का भी फर्ज है कि अमेरिका के हित को बढ़ाने वाली नीतियां तय करें, इसलिए राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब से संबंध बनाए रखेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। बीबीसी का आकलन बताता है कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना पूरे देश में अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रही है। विपक्ष के नियुक्त किए जाने वाले शैडो हेल्थ सेक्रेटरी जॉन एशवर्थ ने कहा कि सरकार को स्थिति को संभालने की जरूरत है और मरीजों को प्राथमिकता मानने की जरूरत है।
These are absolutely shocking figures and behind all these statistics are real people, people
सभी आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं और ये सभी आंकड़े इंसान हैं। लोग दर्द और परेशानी में ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े लोग भीड़ भरे वार्ड में ट्रॉली पर पड़े हैं। जरा सोचिए कि आपको कैंसर के इलाज की जरूरत है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा इंतजार करना होगा। शेडो हेल्थ सेक्रेटरी जॉन एशवर्थ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल और पोलैंड माइग्रेशन यानी प्रवासन पर बने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते को अस्वीकार करने वाले देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। इस समझौते को अगले महीने से लागू किया जाना है। इससे पहले ऑस्ट्रिया, हंगरी और चेक गणराज्य ने भी इस समझौते पर अपना समर्थन वापस ले लिया था और अमेरिका तो इस पर कभी सहमत हुआ ही नहीं। इस गैर बाध्यकारी समझौते का मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन के प्रबंधन में सुधार करना है, जबकि देशों को अपनी खुद की माइग्रेशन नीतियां तय करने का अधिकार होगा। इसराइल और पोलैंड की दलील है कि ये संधि वैध और अवैध प्रवासन के बीच पर्याप्त अंतर नहीं करती। अमेरिका ने 6 व्यक्तियों और 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो रूस और ईरान द्वारा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को मजबूत करने और आतंकवादी समूहों को आर्थिक मदद देने के लिए उपयोग की जा रही थी। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि रूस ने सीरिया को लाखों बैरल तेलों की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की, जिसके बदले में हमास और हिजबुल्ला को लाखों डॉलर पहुंचने में मदद मिली। अमेरिका ने जिन्हें टारगेट किया है उनमें सीरियाई नागरिक मोहम्मद आमिर अल-शिविकी और उसकी रूस स्थित कंपनी ग्लोबल विजन ग्रुप है, साथ ही कुछ लेबनानी, रूसी और ईरानी नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका के प्रतिबंध से सीरिया और नामित आतंकवादी समूहों को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने बांग्लादेशी फोटोग्राफर शाहुल आलम को बांग्लादेश की जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें अगस्त महीने में इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने एक छात्र विरोध प्रदर्शन पर सरकार के रवैये की आलोचना की थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। साल 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दो दोषियों की सजा का ऐलान किया। इस फैसले में एक दोषी को फांसी और दूसरे को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। ये फैसला सिख दंगा पीड़ितों के लिए उम्मीद की एक किरण भी बनकर आया है। दिल्ली से नवीन नेगी की रिपोर्ट।
और देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लाइक जस्टिस डिनाइड। तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी अब भी जस्टिस हमें मिल जाएगा तो हम समझेंगे कि हमें कुछ ना कुछ राहत जरूर मिली है।
यह आवाज है 1984 में हुए सिख दंगों के एक पीड़ित की, जो कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद थे और इन दंगों से जुड़े मामले की सुनवाई पर फैसला सुनने आए थे। साल 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कल दो अभियुक्तों को सजा सुनाई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नरेश सहरावत और यशपाल सिंह को दो सिखों की हत्या के मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने यशपाल सिंह को फांसी और नरेश सहरावत को उम्र कैद की सजा सुनाई। 14 नवंबर को जब इन दोनों को दोषी करार दिया गया था, तब अदालत परिसर में इन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इसी वजह से कल का फैसला जज अजय पांडे ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुनाया। आम आदमी पार्टी से जुड़े और 1984 के दंगों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए काम करने वाले वरिष्ठ वकील H.S. फुल्का ने BBC से बात करते हुए इसे एक बड़ी जीत बताया।
बिग विक्ट्री, बहुत बड़ी जीत है ये, मगर ये बिगनिंग है, क्योंकि अभी और भी बहुत से केस पेंडिंग पड़े हैं। अब ये तो इससे बिगनिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस। सज्जन कुमार का केस में भी जजमेंट पेंडिंग पड़ी है और भी केस पेंडिंग पड़े हैं। हमें अब उम्मीद है कि उनमें भी इंसाफ मिलेगा।
कई सालों से इंसाफ का इंतजार कर रहे दंगा पीड़ितों ने इस फैसले के बाद उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में दूसरे मामलों में भी फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे ही एक दंगा पीड़ित और एक मामले में चश्मदीद गवाह जगशेर सिंह ने BBC से कहा,
हम रहते थे जी पालम कॉलोनी राजनगर, चार भाई रहते थे और मेरे कजन थे, दो पास रहते थे। बुआ जी का दामाद था, वो एक उनका बेटा, तो तब ये मैं ही अकेला बचा था इनमें से, सभी को मार दिया। तो वो वाला केस CBI कर रही है, वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसकी भी सुनवाई 24 के बाद कभी भी हो सकती है, और इस केस के बाद हमें भी उम्मीद बजी है कुछ ना कुछ इंसाफ मिलेगा।
फैसले के बाद इस मामले पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई। NDA सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने इस सजा का श्रेय BJP सरकार को दिया। उन्होंने ट्वीट किया,
आज NDA सरकार की कोशिशों की वजह से 1984 के सिख दंगों के दो दोषियों को सजा मिली। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने 2015 में SIT गठित की, जिसने 84 में दिल्ली पुलिस द्वारा बंद कर दिए गए केसों को फिर से खोला। जब तक आखिरी हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
वहीं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि न्याय के मंदिर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इस फैसले से आम जनता का न्यायपालिका में भरोसा बढ़ा है। BJP द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाना कि उनकी वजह से इस फैसले में देरी हुई है, इस पर शकील अहमद ने कहा,
देखिए वो राजनीति करने की कोशिश करते हैं, ये बात सब जानते हैं कि लोगों के मौत पर भी, लोगों की लाश पर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये न्यायालय का फैसला है, और न्यायालय ने जो फैसला किया है वो साक्ष्य, वो प्रस्तुति जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत की गई, उनके आधार पर किया है।
जिस मामले में कल फैसला सुनाया गया, वह दरअसल दक्षिणी दिल्ली के इलाके महिपालपुर में हरदेव सिंह और अवतार सिंह के कत्ल से जुड़ा था। इस मामले में पीड़ित हरदेव सिंह के भाई संतोष सिंह ने शिकायत दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने 1994 में सबूतों के अभाव के कारण केस बंद कर दिया था, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने फिर से इस केस को खोला, जिसके बाद इस मामले की तहकीकात की गई और नरेश सहरावत और यशपाल सिंह को आरोपी माना गया। इस फैसले के बाद दंगा पीड़ितों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उन्हें दूसरे मामलों में भी जल्द ही न्याय मिलेगा। नवीन नेगी, BBC दिल्ली।
भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक प्रेस वार्ता में ऐलान किया है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने इसके पीछे खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया, लेकिन साथ ही कहा कि अंतिम फैसला पार्टी लेगी। हालांकि सुषमा स्वराज ने साफ किया है कि वो राजनीति नहीं छोड़ रही हैं। BBC संवाददाता नवीन नेगी ने वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह से संपर्क किया और पहले यही पूछा कि सुषमा स्वराज के चुनाव न लड़ने के फैसले के क्या मायने हैं।
देखिए, वो बहुत कम उम्र में, 25 साल की उम्र में हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर बन गई थी। बहुत तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती होती थी, उनकी भाषण की जो कला है, कौशल है, उसका सब लोहा मानते थे, वो पार्लियामेंट हो या आम सभाओं में बोलना हो, उनकी इस क्षमता को पार्टी भी जानती थी और उनके विरोधी भी उसका एक तरह से कहें तो एहतराम करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। दूसरी बात जो है, जो 2013 से एक नई कहानी शुरू हुई, वो जिसमें पहले नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश हुई कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनने से चुनाव की, उसके बाद उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने से रोकने की कोशिश हुई, उस लड़ाई में सुषमा स्वराज लालकृष्ण आडवाणी के साथ थी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 2014 में जब सरकार बनी तो शायद मोदी उनको मंत्रिमंडल में न ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी ने उनको न केवल मंत्रिमंडल में लिया बल्कि कैबिनेट की सबसे जो महत्वपूर्ण कमेटी है CCS उसका हिस्सा बनाया, उनको विदेश मंत्रालय दिया।
उनको मोदी के एक तरह से दूसरे गुट वाला नेता समझा जाता था बीजेपी के अंदर भी, यानी कि आडवाणी गुट के नेता समझी जाती थी। क्या एक वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं वो मोदी के जो वो खाका है, जो टीम है, उसमें फिट नहीं बैठ पा रही थी आने वाले भविष्य को देखते हुए?
देखिए, अभी अगर जब मोदी 14 में आए तो उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो स्वीकार्यता है, वो पार्टी में, पार्टी के बाहर अपने चरम पर थी। उस समय मोदी अगर उनको वो फिट ना बैठ रही होती तो उनको मोदी अगर निकाल देते तो ज्यादा लोग शिकायत भी शायद नहीं करते, क्योंकि मालूम है कि उन्होंने आखिर तक मोदी का विरोध करने में लालकृष्ण आडवाणी का साथ दिया। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि उसमें नहीं फिट बैठ रही थी, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह की कार्यशैली है प्रधानमंत्री की और पार्टी अध्यक्ष की, उसमें वो उस तरह से फिट नहीं होती है जैसे बाकी कई नेता या मंत्री हो।
बीजेपी के लिए कितना ये असर डालेगा कि सुषमा स्वराज अब चुनाव नहीं लड़ेंगी?
नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए जो है ये बड़ी नुकसान की स्थिति होगी एक ऐसे नेता का। देखिए, नेता बनने में किसी को 25-30 साल लगते हैं और ऐसे ही नेता बनने में तो और मुश्किल होता है। बहुत कम महिलाएं होती हैं जो इस स्तर तक और इस कामयाबी से तक पहुंच पाती हैं। तो देश की विदेश मंत्री हैं, इससे पहले आप उनका 2009 से 2014 तक जब वो पार्लियामेंट में लीडर अपोजिशन थी, तब उनका जो संसद में जो उनका भाषण का कौशल था, संसदीय क्षमता उनकी जो थी, वो उभर कर जो है खुलकर सामने आई। माना जा रहा था कि वो भी भाजपा में जो 4-5 प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते थे उनमें से एक, उनको भी माना जाता था, लेकिन उनके साथ एक ड्रॉबैक था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से नहीं आती है।
वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास होती है। प्रदेश में आदिवासियों की तादाद 22% है और उनके लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। पिछले 3 चुनावों से भाजपा आदिवासी इलाकों में जीतती आ रही है। आखिर भाजपा ने आदिवासियों के लिए ऐसा क्या किया है कि उसे हर बार आदिवासियों के वोट मिलते हैं? मध्य प्रदेश के इटारसी से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
40 सालों में नौकरी करते, कोई परमानेंट कोई चांस मांग नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, खा रहा है क्या? भाई बाल बच्चे पाल रहा है, उसी नौकरी में कर रहा है, खा रहा है।
55 साल के मुन्ना आदिवासी हैं और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर बने बांध के पास एक गांव में रहते हैं। ये बता रहे थे कि पिछले 40 सालों से उनके जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। मुन्ना जहाँ रहते हैं वहाँ सागौन का जंगल है और तवा नदी का पावर प्लांट, मतलब इनके इलाके के संसाधनों से देश के बाकी हिस्सों में संपन्नता जा रही है, लेकिन ये अब भी महरूम हैं। मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी हैं। इनके पास किसी भी पार्टी की सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता है। 230 सीटों वाली विधानसभा में इनके लिए 47 सीटें सुरक्षित हैं। पिछले 3 चुनावों से बीजेपी आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों में से ज्यादातर पर जीत दर्ज करती आ रही है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2008 में भी 47 में से 31 आदिवासी सीटें बीजेपी की झोली में आईं। 2003 में परिसीमन से पहले आदिवासियों के लिए 41 सीटें रिजर्व थीं और बीजेपी ने 37 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने 2003 से आदिवासियों के लिए ऐसा क्या कर दिया कि ज्यादातर सीटें उसी के खाते में गईं? ऐसा तब है जब आदिवासी आज भी वन अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा और रोजगार के मामले में पिछड़े हुए हैं और बड़े बांधों के कारण आज भी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। आदिवासियों के लिए लंबे समय से प्रदेश में काम कर रही स्मिता गुप्ता इटारसी के पास केसला नाम के गाँव में रहती है। स्मिता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से उसके कई संगठनों ने आदिवासी इलाकों में पैर पसारे हैं। इनमें RSS का वनवासी कल्याण परिषद सबसे अहम है।
बीजेपी सरकार आई है तो ये कई इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे यहाँ का जो स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर जैसा उसको बना लिया है और वनवासी कल्याण परिषद को फंडिंग किया है, तो उससे उन लोगों ने एक लोगों को, कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, पैसे के बल पे ही तैयार किया हो बोला, लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है हो सकता है लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं।
हालांकि वनवासी कल्याण परिषद आदिवासियों के हिंदूकरण के आरोपों को खारिज करता है। परिषद के मध्य प्रदेश प्रांत प्रमुख योगी राज परते,
हम लोग जो काम कर रहे हैं वो वनवासी क्षेत्र में उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग खुद चाह रहे हैं कि जो वनवासियों का जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी लोक कला है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनका प्रसार प्रसार हो।
फाग्राम आदिवासी हैं और वो समाजवादी जन परिषद से पिछले 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2 से 5 हजार वोटों में ही सिमट कर रह जाते हैं। फाग्राम इस बार होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी के करोड़पति उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ एक झोले के साथ प्रचार पर निकलने वाले फाग्राम। फाग्राम आखिर क्यों चुनाव लड़ते हैं? वो कहते हैं कि जिस हद तक चुनौती दे सकते हैं और आदिवासियों के बीच जितनी जागरूकता फैला सकते हैं वो करेंगे। फाग्राम को लगता है कि बीजेपी आदिवासियों के मजबूरी का फायदा उठा लेती है। वो कहते हैं,
आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाते हुए चाहे वनवासी कल्याण परिषद बोले या आरएसएस के शाखाएं की बात बोले, वो वहां पर जो भी थोड़े होशियार लोग थे उनको अपने उसमें लिया।
रजनीश कुमार, BBC इटारसी।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
भारत के केंद्रीय बैंक RBI और भारत सरकार के बीच अतिरिक्त मुद्रा और दूसरे मुद्दों को लेकर हाल में जो टकराव हुआ था, कल RBI बोर्ड की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि इसका अंत हो गया। लेकिन आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन दास ने हमारे संवाददाता जुबैर अहमद से एक बातचीत में कहा कि दोनों पक्षों के बीच टकराव या तनातनी की बातें केवल मीडिया का शगुफा थी, क्योंकि RBI भी सरकार का ही एक अंग है, कोई स्वतंत्र संस्था नहीं। सुनिए ये बातचीत।
गवर्नमेंट और RBI के बीच में कोई वार हो ही नहीं सकता है। इसका कारण ये है कि हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में, RBI को फंक्शनल ऑटोनॉमी का स्कोप तो है, लेकिन RBI कोई सोवरेन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है। RBI एक एजेंसी सरकार की है जिसको मॉनिटरी पॉलिसी मामले में फंक्शनल ऑटोनॉमी है, लेकिन ये हमेशा देखना चाहिए कि हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में, क्योंकि सरकार अकाउंटेबल है तो अल्टीमेटली सरकार को ही, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू ही प्रिवेल करेगा और RBI को उसको मानना पड़ेगा।
अगर दोनों में ठन गई तो इवेंचुअली अगर सरकार भी अड़ी रही तो सरकार की ही बात प्रिवेल करेगी, ये कह रहे हैं।
बिल्कुल, इसमें करना भी चाहिए क्योंकि वही सिस्टम है।
लोग फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो RBI की फंक्शनल ऑटोनॉमी पर अंकुश लगाना चाहती है?
मेरे ख्याल से RBI का फंक्शनल ऑटोनॉमी को मोदी सरकार ने कई स्टेप्स ऐसा लिया है, जैसे कि नोटबंदी की जो एपिसोड रहा। अब ये सरासर ऐसे स्टेप्स हैं जो दुनिया में कहीं भी कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन या कोई भी सेंसिबल ओपिनियन इस चीज को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन सरकार ने किया। अब तब जब RBI की एक्सपर्ट ओपिनियन उसके एग्जिस्ट होना चाहिए था, तब तो नहीं हुआ।
अब जो डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक के कह रहे थे कि ये जो सरप्लस लिक्विडिटी गवर्नमेंट मांग रही है वो सही नहीं होगा, तो अब इसके लिए कमेटी बना दी है।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सरप्लस होते हैं, वो सरप्लस में से कितना सरकार को डिविडेंड के हिसाब से आना चाहिए और कितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व में जाना चाहिए, इसमें लेजिटिमेटली सरकार का शेयर रहना है। ऐसा नहीं कि नहीं रह सकता, क्योंकि सरकार मालिक है, वो अल्टीमेटली सरकार को ही तय करना है।
सरकार मांग क्यों रही, ये श्रोताओं को जरा हम समझा दीजिए।
गवर्नमेंट का जो बजट है वो प्रेशर में आ गई है और इसके कारण कई है। देखिए कि जैसे कि GST है, GST में जितनी रेवेन्यू बॉयंसी की एक्सपेक्टेशन थी, शायद उतनी रेवेन्यू बॉयंसी नहीं हो रही है, एक तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का या प्राइवेटाइजेशन का पब्लिक सेक्टर का, डेट सेल्स की, उसमें से जो सरकारी खजाने में आना था शायद आ नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार का वेलफेयर स्कीम में या डेवलपमेंट स्कीम में इन एन इलेक्शन ईयर जो कमिटमेंट है पूरा करने का, उसके लिए सरकार की वो डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है।
आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार प्रिय रंजन दास से बात कर रहे थे जुबैर अहमद। भारत प्रशासित कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में एक ऐसी महिला को जीत मिली है जो कुछ साल पहले तक पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में रहती थी। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से इस पार आने के बाद उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने महिला सरपंच तक का सफर तय किया, सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
हमें आए दिन तक न किसी ने तलाश किया, पूछा न कुछ, हम इतने मुश्किल से गुजरे, हमारी जिंदगी क्या बर्बाद होके रह गई।
ये थी 29 साल की दिलशादा बेगम जो वर्ष 2012 में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से भारत प्रशासित कश्मीर आई थी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस बार वाले कश्मीर आकर चुनाव लड़ेंगी। दिलशादा बेगम अपने पति मोहम्मद यूसुफ भट्ट और अपने चार बच्चों के साथ उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के मावर पेंगरू इलाके में रहती हैं, जहां वो अपने पति के साथ किरियाने की एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। मोहम्मद यूसुफ भट्ट वर्ष 1997 में सीमा पार कर हथियारों की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान चले गए थे और दिलशादा के साथ वर्ष 2002 में मुजफ्फराबाद में शादी की थी। दिलशादा कहती हैं,
जी के यही के लड़का था वहाँ पे, फिर हमारी मुसलमानी तौर तरीके से वहाँ पे शादी हो गई, तो फिर जब बीच में सुना के यहाँ की गवर्नमेंट हमें बुला रही है, कहती है कि आपने अपने घरों में लौट के आओ, आप लोगों के साथ हम अच्छा सलूक करेंगे और अच्छी तरह से आपको मकान, आपकी पूछगाछ और आपको उसके बाद 3 महीने के बाद आपको वीजा देंगे।
जम्मू कश्मीर में जारी चुनाव में आने के मकसद पर दिलशादा का कहना था,
मैं इन अपने बहन भाइयों की खिदमत के लिए ये फार्म भरा है और इनकी खिदमत भी करूंगी और अपनी पहचान भी लेना चाहती हूँ।
दिलशादा कहती है कि सरकार के कहने पर हम कश्मीर तो वापस लौटे, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों में से एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया।
हमारा किसी ने कुछ सुना ही नहीं, हम रोते पीटते रह गए, अब क्या कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम था हमारी पहचान देना या हमें आगे तक पहचान देना बनाना, ये उनका काम था, उन्होंने हमें आए दिन तक नहीं दी।
दिलशादा के मुताबिक उनके पिता भारत प्रशासित कश्मीर के टेंगडार इलाके के हैं, जो वर्ष 1992 में मुजफ्फराबाद चले गए थे और वहाँ कारोबार करते थे। मुजफ्फराबाद में इस समय दिलशादा की माँ, 3 भाई और 4 बहनें रहती हैं। दिलशादा कहती हैं कि वो अपने इलाके के लोगों की शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2010 में उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की थी कि जो भी कश्मीरी नौजवान सीमा पार हथियारों की ट्रेनिंग करने गए थे वो वापस अपने घरों को लौट सकते हैं और सामान्य जीवन गुजार सकते हैं। इस घोषणा के बाद सैकड़ों कश्मीरी नौजवान वापस कश्मीर अपने घरों को लौटे हैं। वापस लौटने वाले अक्सर नौजवानों ने पाकिस्तान में शादी की है और अपनी पत्नियों को यहाँ साथ लाया है। मावर के रिटर्निंग ऑफिसर आशक हुसैन का कहना था कि दिलशादा को निर्विरोधी करार देकर सरपंच बनाया गया है। उनका कहना था कि जो कागजात दिलशादा के सरपंच फॉर्म कबूल करने के लिए दरकार थे वो सब कागजात उनके पास थे, जिसकी बुनियाद पर उनका फॉर्म कबूल किया गया। इलाके के विधायक इंजीनियर रशीद कहते हैं,
वो जो बच्चियां हैं हमारे सरहद के उस पार वाले कश्मीर की हैं, या हम कहते हैं कि सारा कश्मीर हमारा है, तो उस हिसाब से चाहे सरहद के उस पार का या सरहद के इस पार का कोई भी किसी जगह इलेक्शन लड़े, किसी इंतखाबी अमल में शमूलियत करे, तो मेरे ख्याल में उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए।
पाकिस्तान से अपने घरों को वापस लौटे सैकड़ों नौजवानों की शिकायत ये रही है कि सरकार ने जो कहा था और जो आश्वासन उन्हें दिलाया गया था वो सब झूठ साबित हुआ। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
और अब समय है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। सर्वप्रिया सांगवान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखबारों के साथ, बताइए सर्वप्रिया।
कुलदीप, जो हमने आज खबर भी सुनाई है 1984 सिख दंगे में जो फैसला आया है, जो सज़ा सुनाई गई है, उसके बाद आज प्रमुखता से अखबारों ने इसे छापा है। और हिंदुस्तान का जो मैं पन्ना देख रही हूँ दूसरा, उन्होंने पूरा एक पन्ना इसी को दिया है, जिसपे बहुत सारे लोगों की, जो पीड़ित लोग हैं उनकी भी गुहार है। उन्होंने भी कहा, जो दूसरे मामलों में पीड़ितों ने भी न्याय मांगा, वो कह रहे हैं कि अदालत जल्द से जल्द सुनवाई और इंसाफ करे हमारे साथ। और जब पटियाला हाईकोर्ट परिसर में जब ये सुनाया जा रहा था जब फैसला, तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर थे, पीड़ित लोग, और सब उम्मीद लगाए बैठे, तो शायद इससे एक उम्मीद भी बंधी ही होगी।
जी, अमर उजाला ने इसका शीर्षक इस तरह से दिया है, सिख दंगा, 34 साल बाद एक को सजाए मौत, दूसरे को उम्र कैद, पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों पर 35-35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
जी, और इसके अलावा ये बताया भी गया हिंदुस्तान में कि अपराध साबित करने में कौन से 5 सबूत अहम रहे हैं, कि किस तरीके से सुरजीत सिंह की आबीती थी, कैसे गवाह सामने आए और अस्पताल में रिकॉर्ड की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर को इस तरीके से छापा है कि जो जज हैं 1984 दंगे की जो सुनवाई कर रहे थे उन्होंने कहा था कि इतने बड़े नरसंहार के जो पीड़ित हैं उनको हम ऐसे ही अधर में नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने भी उसको पूरा टाइमलाइन और यहाँ पर सब कुछ छापा है इसको लेके और इन्वेस्टिगेशन कैसे रहा उसके बारे में। इसके अलावा एक और खबर है, ये है हिंदुस्तान टाइम्स की ही, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से $1 बिलियन की एड मिली है, मतलब उन्हें सहायता राशि मिली, आर्थिक मदद। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने ट्रंप सरकार ने उनकी जो एड है, जो आर्थिक मदद है, उस पर सवाल उठाए हैं, उसको रोका है।
और कल ही राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया था कि हमने पाकिस्तान की बहुत मदद की लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिला।
जी, इसके अलावा एक और जो खबर है वो ये कि जो CBI का जो पूरा मामला चल रहा है कोर्ट में, उस पर कल सुप्रीम कोर्ट को भड़क गए क्योंकि एक जो CGI ने जो CGI की जो आलोक वर्मा के वकील को फटकार लगाई है क्योंकि वो उनसे पूछा कि जवाब लीक कैसे हो गया, जो जवाब लिख के भेजा था CGI ने वो लीक हो गया प्रेस के अंदर। तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो बेंच ने जो वर्मा थे आलोक वर्मा उनके वकील से पूछा कि आप बताइए कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो कि मुझे मालूम नहीं है, तो 67 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग लायक ही नहीं है कि इस कोई सुनवाई हो सके।
ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पे ये खबर है, अमर उजाला का शीर्षक है कि नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सब सुनने लायक ही नहीं है, और जनसत्ता ने इस खबर को ऐसे छापा है कि आप में से कोई भी सुनवाई की पात्रता नहीं रखता, खफा हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई 29 तारीख तक स्थगित कर दी गई।
जी, और एक दिल्ली एयरपोर्ट पर हिजबुल का आतंकी दबोचा गया है, ये दैनिक जागरण की खबर है कि पुलिस की स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अंसार उल हक को बेंगलुरु से लौटते वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की CID यूनिट में काम करने वाले SI की हत्या मामले में उनकी तलाश थी। और इसके अलावा जो आरोपित ने महिला मित्र की मदद से हनी ट्रैप का शिकार बनाकर SI के मूवमेंट की जानकारी हासिल की।
एक खबर जनसत्ता में पहले पन्ने पर है, खेल में हुए विवाद के बाद की थी हत्या, 7 को फांसी। मुजफ्फरनगर में का ये मामला है, खेल में हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की हत्या और 3 पर कातिलाना हमला करने के मामले में 7 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। जनसत्ता अखबार में ये खबर है। बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए सर्वप्रिया सांगवान का। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह। क्रिकेट जगत के सबसे रोमांचक टीमों के मुकाबले की शुरुआत आज से होने जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शुरुआत T20 मुकाबले के साथ होगी जो कि आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। भारत का लक्ष्य तीनों T20 मैच अपनी झोली में डालना होगा। भारतीय टीम ने नवंबर 2017 से अब तक 7 T20 सीरीज जीती हैं। उसे आखिरी बार T20 सीरीज में जुलाई 2017 में वेस्ट इंडीज ने हराया था। पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत ने T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की थी। जाहिर सी बात है भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बड़ा होगा। साथ ही साथ अगर बॉल टैंपरिंग मामले में प्रतिबंध का सामना कर रहे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की बात करी जाए तो सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर से बैन कम हो सकता है, पर अगर ये बैन हटाया जाता है तो क्या कोई असर पड़ सकता है इस सीरीज पर, बता रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मदन लाल।
नहीं देखिए, ना खेलने से असर तो पड़ेगा, पहली बात तो ये है इसमें, क्योंकि देखिए वो टॉप के खिलाड़ी हैं। आपके पास 2-3 खिलाड़ी हैं, जैसे हमारे पास विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं, हम इनके बारे में भी ऑस्ट्रेलिया में बातें होती होंगी। और बाकी ये ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बैन को कैसे देखते हैं, क्या उनको बैन को हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। मेरे विचार में उनको बैन हटा देना चाहिए क्योंकि देखिए उनको काफी सजा मिल चुकी हुई है, क्योंकि ये जो बॉल टैंपरिंग वाला किस्सा है ये दुनिया में होता है, किस्सा वो चलता रहा है, पर इन्होंने इनकी जो बेवकूफी रही है, इन्होंने जेब में सैंड पेपर लेकर चले गया, तो ये तो इतना खराब इन्होंने कर दिया कि मैच को जीतना किसी कॉस्ट पे भी जीतना, ये कर मैं समझता हूँ कि खराबी थी, इसलिए उनको जो पनिशमेंट मिली है काफी मिली है।
ये थे वरिष्ठ खेल पत्रकार मदन लाल।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
बीबीसी समाचार। 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया और एक को फांसी और एक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धार्मिक नेताओं की एक बैठक पर हुए आत्मघाती बम हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अमरीका की खुफिया एजेंसी के मुताबिक सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के बारे में किंग सलमान को सब पता था। बीबीसी का आकलन बताता है कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना पूरे देश में अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रही है। विपक्ष के नियुक्त किए जाने वाले शेडो हेल्थ सेक्रेटरी जॉन एशवर्थ ने कहा कि सरकार को स्थिति को संभालने की जरूरत है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।